जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णु पाद परमंत परि विजयाचार्य स्तोत्र सदस्य श्रीमते शिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की निताय गौर प्रेम आनंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंद 9वा अध्याय 14वा श्लोक का क्रम संख्या 21 एताव पुरनकौ राजन एताव पुरनकौ राजन न्यासौ रक्तस्व मानद न्यासौ रक्तस्व मानद संरम्ये संरम्ये भवता साकं श्लाद्य श्लाद्यः स्त्रीणां वरः स्मृतः संरम्ये भवता साकं संरम्ये भवता साकं श्लाद्य स्त्रीणां वरः स्मृतः श्लाद्य स्त्रीणां वरः स्मृतः एताव उरनकौ राजन् न्यासौ रक्तस्व मानद संरम्ये भवता साकं श्लाद्यः स्त्रियां वरं वरः स्मृतः संरक्षे भवता साकं श्लाद्य स्त्रीणां वरः स्मृतः एतावरणकौ राजन् न्यासो रक्षस्व मानद साकं श्लाद्य स्त्रीणां वरः स्मृतः एतावरणकौ राजन् न्यासौ रक्षस्व मानद संरक्ष्ये भवता साकं श्लाद्य स्त्रीणां वरः स्मृतः माताजी एतावरणकौ राजन् न्यासो रक्षस्व मानद सौरक्षेष्भवता साकं श्लाद्य स्त्रीणां वर एतौ इन दोनों को उरणकौ मेमने राजन हे राजा पुरुरवा न्यासो नीचे गिरे हुए रक्षस्व रक्षा करो मानद अतिथि को सम्मान देने वाले समरस्ये मैं रमण करूंगी भवता साकं तुम्हारे संग रहकर श्लाद्यः श्रेष्ठ स्त्रीणां स्त्री का वर पति मृतः कहा गया है। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा है। शिला प्रभुपाद महाराज की इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। हे राजा पुरुरवा, आप इन दोनों मेमनों को शरण दे, क्योंकि ये भी मेरे साथ गिरकर आए हैं। यद्यपि मैं स्वर्ग लोक की हूं और आप पृथ्वी लोक के हैं, किंतु मैं निश्चय ही आपके साथ संभोग करूंगी। आपको पति रूप में स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप हर प्रकार से श्रेष्ठ है। जैसा कि ब्रह्म संहिता के पांचवें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा गया है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। इस ब्रह्मांड में अनेक लोक और अनेक आकाश है। जिस स्वर्ग लोक के आकाश से मित्र तथा वरुण द्वारा स्थापित होकर उर्वशी आई थी वह इस पृथ्वी के आकाश से भिन्न था, फिर भी उर्वशी ने पुरुरवा की प्रेयसी बनना स्वीकार कर लिया। यदि स्त्री को उत्तम गुणों वाला कोई पुरुष मिल जाए तो वह उसे पति रूप में स्वीकार कर सकती है। इसी प्रकार यदि किसी मनुष्य की ऐसी स्त्री से भेंट हो जो निम्न कुल की हो किंतु जिसमें उत्तम गुण पाए जाते हैं तो वह उसे तेजस्वी पत्नी बना सकता है। जैसा कि चाणक्य पंडित का भी उपदेश है, यदि नर तथा नारी के गुण समान स्तर के हो तो उनका मिलन श्लाघनीय है। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभिस्तं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीपादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। सभी उपस्थित वैष्णव वृंद को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सभी से प्रार्थना कि आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए और मेरे लिए भगवान श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना कीजिए। मेरे भाग्य में हमेशा कठिन श्लोक ही आता है, पता नहीं आज का श्लोक भी वैसे बहुत कठिन है, लेकिन हालांकि मैं जानता हूं कि मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता हूं ये सब, लेकिन आप वैष्णव के आशीर्वाद से सदैव प्रयत्न करता हूं और हमें इसकी तरह मैं विशेष प्रणाम हमारे बनामली प्रभु को करता हूं जो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, उनसे हमेशा मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं, क्योंकि उनका प्योरिटी और आशीर्वाद से मुझे लगता है कि मैं आज का कुछ श्लोक का व्याख्यान कर सकूं। जैसे मैंने बताया कि ये अध्याय बहुत कठिन है, उर्वशी द्वारा पुरुरवा पर मोहित होना, और ये अध्याय पूरा कठिन है समझना, इसका जो लीला चल रहा है वो कठिन है समझना, और ये श्लोक और भी कठिन है। लेकिन फिर भी मैं सबसे पहला जो श्लोक स्वयं सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं वो पहले लेकर बताता हूं कि क्या चीज है ये। हे राजन, अभी तक आपने सूर्य वंश का विवरण सुना, अब सोम वंश का अत्यंत कीर्तिप्रद एवं पावन वर्णन। देखिए, अत्यंत कीर्तिप्रद है और पावन करने वाला वर्णन सुनिए। इसमें एल यानी पुरुरवा जैसे राजाओं का उल्लेख है जिनके विषय में सुनना कीर्तिप्रद होता है। सर्वप्रथम श्लोक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वैसे ही सोम वंश जो है, चंद्र वंश जो है, वो कीर्तिप्रद है। इसी वंश में स्वयं भगवान कृष्ण अवतरित भी हुए हैं। और इसी वंश के अनेक कार्यकलापों और लीलाओं को सुनना अति पावन कार्य है। और विशेष करके पुरुरवा का वर्णन सुनना भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि पावन कार्य है। प्रश्न, अगर आप इस कथा का श्रवण कर रहे हैं पहले से बहुत दिनों से, तो मन में निश्चय ही प्रश्न होगा कि ऐसा कैसे ये पावन कार्य कार्य कर रहे हैं पुरुरवा या सोमवंश के जो लोग हैं या स्वयं सोम यानी चंद्रदेव भी, ये कैसा कल्याणकारी कार्य करते हैं या पुण्यशाली उनकी लीला है, ये समझ में नहीं आएगा। एक तरफ देखा जा रहा है अपनी भौतिक दृष्टि से, अगर इसे सोचे बुद्धि लगाने की कोशिश करें तो सोम जो एक देवता है वह अब देवताओं के गुरु बृहस्पति जो है उनकी ही पत्नी का किडनैप यानी उसको अपहरण करते हैं, उससे संग करते हैं, उसे एक पुत्र प्रदान करते हैं। उसी पुत्र का एक पुत्र पुरुरवा है जो उर्वशी से संग कर रहे हैं। उर्वशी जो स्वर्ग लोक की है, अप्सरा है, इंद्र लोक से आई है, हालांकि कुछ श्राप की वजह से वो पृथ्वी लोक पे आई है। श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, पिताई गौर प्रेमानंद। श्रीला प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताएं कि अनेक 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 प्रकार के ब्रह्मांड होते हैं। किसी एक ब्रह्मांड को अगर ले लें तो उसमें अनेक प्रकार के प्लैनेट ग्रह होते हैं। वहां का वातावरण जो होता है, एक ग्रह का वातावरण, वो दूसरे ग्रह के वातावरण से बिल्कुल ही भिन्न होता है। एक जगह का वातावरण, मान लो सूर्य का वातावरण देखे तो गर्मी ज्यादा है, आग ही आग है, वहां कैसे जीव रह पाएंगे जिसका शरीर आगमय है। चंद्रलोक का वातावरण देखे तो कैसा शरीर चाहिए, शीतलता वाला शरीर चाहिए, खम ज्यादा है, आग बहुत कम है वहां, खम और आकाश शरीर में ज्यादा होता है। पृथ्वी पे चले आओ तो मिट्टी और जल ही ज्यादा है, ना अग्नि ज्यादा है ना कोई खम और आकाश इतना ज्यादा है, क्योंकि थोड़ा भी अगर अग्नि खम या आकाश का प्रमाण हमारे शरीर में बढ़ जाएगा तो हम तुरंत रोगिष्ट हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। जैसे अलग अलग ग्रहों का अलग अलग वातावरण है, ठीक उसी तरह अलग अलग ग्रहों के अलग अलग नियम है। वहां प्रकृति के नियम भी अलग होते हैं। जो प्रकृति के नियम चंद्रलोक पे लगते हैं वो पृथ्वी लोक के नहीं होते, अलग होते हैं। पृथ्वी लोक पे मान लो जिसे इलिजिट सेक्स कहा गया होगा, वही चीज वहां पे पाप प्रदान नहीं करेगा स्वर्ग लोक में, वहां का नियम अलग होता है। हाँ, जैसे इस पृथ्वी पे भी हम देखते हैं कि अमेरिका जैसे देश का नियम कुछ अलग है, भारत के नियम कुछ अलग है, या कोई और एशियन कंट्रीज भी ले लो जैसे पाकिस्तान है, थाईलैंड है, वहां के कुछ नियम अलग है। कुछ जगहों में इलिजिट सेक्स को लीगल कहा जाता है, अब भारत जैसे देश में इसको इलीगल कहा जाता है। अगर ऐसी विभिन्नता एक पृथ्वी लोक पे अलग अलग देशों में अलग अलग समाज में होती है तो अलग अलग ग्रहों में, हाँ एक ही ब्रह्मांड में या अनेकों अनेक ब्रह्मांड में क्यों ना हो। उर्वशी का जो वर्णन आया है शिला प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि वो दूसरे ब्रह्मांड से आई है, इस ब्रह्मांड की नहीं थी, लेकिन श्रापित होने की वजह से इस ब्रह्मांड में आई और वो भी पृथ्वी लोक पे। अब उसे हम क्योंकि पृथ्वी पे आई है, पृथ्वी के नियमों से देखें, आप पृथ्वी के ज्ञान और दृष्टि से उसे देखें तो हमारे समझ की बाहर की बात होगी कि ये लीला कैसे पवित्र मानी गई है। इसे समझने के लिए हमें देवताओं की दृष्टि चाहिए। सर्वप्रथम देवलोक में पाप और पुण्य प्राय नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि 100% नहीं होता है, प्राय ये नियम नहीं लगता है, कभी कभी अपवाद नियम जरूर लगते हैं। जैसे इंद्र को विश्वरूप मारे जाने पे ब्राह्मण हत्या का पाप मिला था और उसने फिर वहां की शक्ति के अनुसार, वहां के नियमों के अनुसार उसने बांट भी दिया चारों लोगों को, स्त्रियों को, जल को, वृक्ष को वगैरह, जमीन को बांट दिया था, तो पाप लगा था। अब भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं सिणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंती, वहां भी पुण्य खत्म हो रहा है भोग करते करते करते, और वहां से भी देवता गिरकर इधर आता है। तो पाप और पुण्य है जो पृथ्वी पे है, मनुष्यों के लिए प्राय विशेष होता है, देवताओं के लिए केवल उसका परिणाम भुगतना है। जैसे पाप किया है तो देवलोक जाएगा ही नहीं, लेकिन पुण्य किया है देवलोक जाके पुण्य को क्षीण कर रहा है भोग करते करते करते। वहां पे भोगों की सुविधा क्या है, कोई किसी भी प्रकार का शरीर चलाने के लिए कार्य या बिजनेस या नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, जो चाहिए जितना चाहिए जितनी मात्रा में सब कुछ फ्री में मिलता है। ये कर्म भूमि है पृथ्वी, यहां कर्म करो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी सुंदर हो, हाँ कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन कर्म किए बिना कुछ नहीं मिलेगा। कितने भी पुण्यशाली क्यों ना रहो, टाटा बिरला के बेटे भी क्यों ना रहो, कर्म के बिना कुछ नहीं मिलेगा। स्वर्ग में बिल्कुल विपरीत है, कितना भी अज्ञानी रहेगा, मूर्ख रहेगा, हाँ कुछ कोई भी उसमें क्वालिटीज नहीं है, गुण नहीं है, लेकिन उसको सब कुछ फ्री में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो भोग भूमि है, वहां पे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती है। वहां का शरीर जो है वो रोगिष्ट कभी नहीं होता, यहां थोड़ा सा भोग करो तुरंत ही रोग पकड़ लेता है। वहां वृद्ध नहीं होते हैं, यहां हम वृद्ध होते हैं। वहां पे अप्सराओं के साथ विचरण करना, संग करना, उसे इलिजिट नहीं माना जाता, उसे गैर कायदे से ही माना जाता। यहां परस्त्री के साथ तो निश्चय ही गैर कायदे से माना गया है, यहां तक कि शास्त्र कहता है कि पृथ्वी लोक पे अपनी पत्नी के साथ संग किया हुआ भी अगर पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं है तो वो भी गैर कायदे से है। श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही कड़क, एकदम कड़क वचन कहते हैं पृथ्वी लोक के वासियों के लिए, वेदर लिसिट और इलिजिट, सेक्स इज ऑलवेज ट्रबलसम मिजरेबल। कायदे से किया गया या गैर कायदे से किया गया संग जो है, स्त्री संग, इस पृथ्वी पे सदैव दुखदाई रहेगा। वेदर लिसिट और इलिजिट, यानी परस्त्री गमन बहुत ही अत्यंत दुखदाई रहेगा, लेकिन अपनी पत्नी के संग किया गया जो संग है वो भी अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा और तैयारी के साथ नहीं किया गया तो वो भी इलिजिट है, वो भी दुखदाई है, वो भी हमें परेशान करेगा, और ऐसे व्यक्ति के लिए भगवत धाम जाने का सोचना भी बहुत बहुत दूर की बात हो जाती है। उसके लिए भौतिक ये आध्यात्मिक प्रगति करना असंभव होता है, असंभव यानी 100% नॉट पॉसिबल, कितना भी करो कुछ भी करो। अब इसकी मैं डिटेल व्याख्या पता नहीं इस सभा में कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बिकॉज 99.99% इसको पालन नहीं कर पाते हैं, और यही एक वजह है जो सबके आध्यात्मिक प्रगति की बाधा बनी हुई है। लेकिन साथ साथ में इन देवताओं पे अपना ये जो ज्ञान है या अपने पृथ्वी का जो नियम है ये हम लोग आरोपित नहीं कर सकते। देवता क्योंकि भगवान के भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने अनेक 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 वर्णाश्रम धर्मों के नियमों के अनुसार मनुष्य जीवन पृथ्वी पे जी लिए है, हाँ जी लिए है। सोचो यहां एक घंटा भी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीना मुश्किल है, देवता बनने के लिए 100 सतत कंटिन्यूअस मानव जन्म वर्णाश्रम नियमों के अनुसार जीना पड़ता है, तब जाके कोई देवलोक में जन्म ले पाता है या देवता बन पाता है। तो फिर उनके लिए भोग एक स्वाभाविक है, एक बहुत ही बड़ा कंसेशन है। प्रश्न होता है कि अगर भक्त है तो भोग क्यों चाहिए, तो भक्त की श्रेणी कर्म मिश्र होती है, ज्ञान मिश्र होती है या शुद्ध भक्ति होती है। तो देवता लोग आते हैं कर्म मिश्र भक्ति में, जिन्हें भक्ति तो करना है लेकिन ज्ञानी है, इतना समझ रहे हैं कि भोग भी भगवान कृष्ण से ही प्राप्त हो सकता है, अन्य कहीं से किसी भी परिस्थिति में कभी भी किसी को नहीं मिल सकता। हम भोग की इच्छा कामना करते हुए देवताओं के पास जा रहे हैं तो ये बिल्कुल ही वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध की बात है। हाँ, वैदिक सिद्धांत के बिल्कुल ही विरोधी बात है। ये कभी नहीं मिल सकता किसी देवताओं से हमें भोग। भोग मिलता है तो अपने कर्म फल से मिलता है, या भगवान ही दे सकते हैं कर्मों के परे जाकर। तो देवताओं पे हमारे नियम आरोपित नहीं किए जा सकते हैं। इसीलिए इंद्र चाहे उर्वशी से भोग कर रहा है या वहां की उर्वशी रंभा वगैरह जो अन्य देवता भोग कर रही है, उनको इन नियमों में बांधा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे पहले भी एक बार मैंने श्रीमद् भागवतम में बताया था कि कई कितनी गलतियां ये महाजन लोग कर रहे हैं, हम लोग देखते आ रहे हैं भागवत में। जैसे सोम का वर्णन है, पिछली बार भी मैंने कहीं कितने वर्णन किए जहां पे लोग क्या क्या कर रहे हैं, पाप ही पाप दिख रहा है। लेकिन उन सभी लोगों का इतना पापमय कार्य होते हुए इनकी निंदा भी की गई है, फिर भी क्यों यहां पे श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ में किया गया है और शिला सुखदेव गोस्वामी स्वयं कर रहे हैं? तो इसका उत्तर यही है जो आचार्य गण में कहते हैं कि इन लोगों ने जीवन में जो भी गलती की, आगे चलकर उन गलतियों पे बड़ा पश्चाताप किया है, प्रामाणिकता से और नम्रता से स्वीकार किया है उन लोगों ने कि हमारे से ये गलतियां हो गई है। उसके लिए जो कुछ सजा है, पश्चाताप है, वैदिक कार्य है, वो उसे बहुत ही अच्छी तरह स्वीकार करते हैं और शत प्रतिशत निश्चय हृदय से एकदम बोलते हैं ना विद ग्रेट डिटर्मिनेशन वो उसका पालन करते हैं और उसमें उनका शुद्धिकरण हो जाता है और उस शुद्धिकरण के बाद वो लोग भक्ति करके भगवत धाम गए हैं, भगवान की प्राप्ति की है। इसीलिए इन लोगों का वर्णन यहां पे है। इनमें से जो देवताओं ने या जो लोगों ने, जो साधु लोगों ने पश्चाताप नहीं किया है, भगवत धाम नहीं गए हैं, उनका वर्णन यहां पे नहीं है। उन्हीं लोगों का वर्णन है जैसे पुरुरवा, हम देखते हैं कि उर्वशी के साथ संभोग कर रहे हैं, पुत्र प्रदान कर रहे हैं, छह छह पुत्र को प्रदान किया। लेकिन पहला देखिए, पुत्र प्रदान किया, ऐसे नहीं कि बिना पुत्र हम संग करेंगे, पुत्र नहीं चाहिए। हम पृथ्वीवासी लोग क्या करना चाहते हैं? पुत्र नहीं चाहिए, डबल इनकम नो किड डिंक बोलते हैं ना, डबल इनकम नो किड, पति पत्नी दोनों कमाएंगे, बच्चे नहीं चाहिए, तो वो वेद के विरुद्ध है। लेकिन पुरुरवा का जो उर्वशी के साथ का संग है, वो पुरुरवा खुद कहता है कि हम पुत्र प्राप्ति करेंगे, तो इट इज परफेक्टली ऑथराइज्ड। ये धार्मिक कार्य है, धर्म अविरुद्ध कामोस्मि, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम मैं हूं। जैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक बार कहा कि अगर मैं ये निश्चित कर सकूं कि स्त्री संग से मुझे जो पुत्र प्राप्त होंगे वो शत प्रतिशत कृष्ण भावना भावित होंगे, तो मैं अनेकों अनेक पुत्र उत्पन्न करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैं ब्रह्मचारी ही रहना पसंद करूंगा। तो हम गृहस्थ लोग क्या गलती करते हैं? हमें संग चाहिए लेकिन हम उसे धार्मिक रीत से करना नहीं चाहते हैं। मत्स्य अवतार प्रभु जी जो शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के चैंपियन है इस्कॉन में, एकदम चैंपियन है इसका काउंसलिंग करने में बरसों से, ये पर्टिकुलर टॉपिक और ये पर्टिकुलर पॉइंट लिसिट इलिसिट विद इन गृहस्थ लाइफ कैसे इलिसिट होता है, उन्होंने एक बार कहा कि सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट टॉयज, दे आर सिंपली एन इंस्ट्रूमेंट टू रिक्रिएट प्रोक्रिएशन। वो भगवान के नियमों के अनुसार सृष्टि का सर्जन करके इसे आगे बढ़ाने के लिए भगवान की दी हुई सुविधा है। जैसे जिस समय हम इस सुविधा को रोकते हैं, हाँ, इसको हम ब्रेक करते हैं उस नियम को, हमारे ऊपर अतिशय भयंकर पाप चढ़ रहा है और अतिशय भयंकर उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसीलिए गृहस्थ को आप कभी भी देखो मैक्सिमम टाइम दुखी चिंतित परेशान रहता है, और वो ब्रह्मचारी जो केवल ड्रेस से ब्रह्मचारी है वो भी सदैव दुखी रहता है। ब्रह्मचारी को भी बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम लोग सैफरॉन कपड़ा पहन लिए तो हो गया। मन में जो इलिजिट विचार आते हैं वो कभी ना कभी, पहले के युगों में तो उसका भी सजा था, लेकिन इस युग में कभी ना कभी वो कार्य में आ जाता है। जैसे थोड़े दिन पहले क्या हुआ, मैं मंदिर आ रहा था, 7:30-8 बजे की बात है, रात का अपने मंदिर में, तो एक मंदिर के ही ब्रह्मचारी सेफ्रॉन ड्रेस में थे और एक दूसरे गृहस्थ थे, हमारे मंदिर के ही गृहस्थ थे, बाहर वाले, वो दोनों बात कर रहे थे। तो मुझे बुलाया तो मैं खड़ा रहा वहां, बात वो लोग कुछ पूछना चाहते होंगे तो मैं खड़ा रहा। तो वो ब्रह्मचारी ऐसे कहने लगे उस गृहस्थ को कि मैं अब इस कपड़े से इतना परेशान हूं, आप एक काम करो, ये कपड़ा आप ले लो और आपका सफेद मुझे दे दो। वो ऐसा कहने लगे, बोले ये कपड़ा आप ले लो और आपका सफेद कपड़ा मुझे दे दो। ये अपने ही मंदिर के दो भक्तों की बात है, एक गृहस्थ शिरोमणि है, एक ब्रह्मचारी है। तो इन विचारों वालों को सर्वप्रथम कार्य अपना ये ड्रेस कलर तुरंत ही बदल देना चाहिए और गुरु के पास जाकर नम्रता से कहना चाहिए कि महाराज मेरे लिए यह संभव, यह आपका संभव नहीं है। शिला प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में, इसी जो अध्याय का जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन जो होता है ना, उसमें एक बहुत अच्छी बात बताई अंत में। सतयुग में केवल एक ही वर्ण था जो हंस कहलाता था, तब चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र नहीं थे। कभी सतयुग में चार वर्ण नहीं थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, केवल एक ही वर्ण था हंस, क्योंकि प्राय लोग हंस होते थे, हंस यानी भगवान के भक्त, और उसमें जो शिरोमणि होते उसे परम हंस कहते हैं। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत शिला प्रभुपाद जी अनेक बार कहे हैं कि कलयुग में केवल एक ही वर्ण है शूद्र, यानी वर्णाश्रम में भी सबसे गया गुजरा लास्ट शूद्र। और कलयुग में क्या, अरे सतयुग में क्या था, वर्णाश्रम के परे हंस। तो यहां पे भी पृथ्वी पे ये दोनों युगों के अलग अलग नियम है, और ये मैक्सिमम घटना जो घटित हो रही है वो सब सतयुग की हो रही है। उर्वशी जब यहां पे आई थी तब पुरुरवा के साथ संग हो रहा है, यही पुरुरवा आगे जाके इतना पश्चाताप करते हैं, बाद में वो शोक प्रकट करते हैं, और शोक प्रकट करने के बाद जो अपना ज्ञान है जो उन्होंने अनुभव से प्राप्त किया वो हमें देकर कहते हैं कि इस मार्ग पे मत चलो, ये दुखमय है, हाँ ये आसक्तिमय है, ये आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा देगा। और बाद में यज्ञ वगैरह करके भगवान विष्णु को संतुष्ट करके भगवत धाम जाते हैं। बस यही कारण है कि इनकी लीलाओं का श्रवण करना आवश्यक है, इसीलिए शिला सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे इनका कीर्तिप्रद या पावनकारी वर्ण का वर्णन कर रहे हैं। कोई बॉलीवुड स्टार का नहीं किया जा सकता है, उसे नहीं कहा जा सकता कि पावनकारी कार्य कर रहा है, कीर्तिप्रद कर रहा है। हालांकि भौतिक स्तर पे यहाँ के लोग इसे कीर्तिप्रद कहते होंगे, इसलिए जितने मैगजीन्स है, न्यूज चैनल्स है, टीवी चैनल से सब उन्हीं का कीर्ति गुणगान गाते रहते हैं, लेकिन वो पावनकारी नहीं है, वो और दुख में फंसाएगा। और ये लोग कभी पश्चाताप नहीं करते हैं और ना ही कभी कोई यज्ञ करने वाले हैं, ये होलसेल में सबको नरक में लेके जाते हैं अपने साथ में, इसलिए उनका पुण्यकारी पवित्र वर्णन नहीं होता है। तो यहां पे पुरुरवा महाराज देखिए, ये उर्वशी जो है एक प्रभु जी मुझे प्रश्न पूछे कि यहाँ पे वो जो मेमने को लेके क्यों आई थी, भेड़िए को लेकर क्यों आई थी, शुरुआत में पूछा एक जन ने प्रश्न, तो भेड़िए लेके आ सकती है, प्रॉब्लम क्या है, स्वर्ग में होते हैं, ये प्रश्न था उनका, होते हैं, कोई भी ग्रह में जाओ 84 लाख योनियां सब जगह है, ऐसा नहीं कि केवल एक ग्रह में केवल मनुष्य है, दूसरे ग्रह में केवल देवता है, या तीसरे ग्रह में केवल ये प्राणी लोग है, ऐसा नहीं है, हर ग्रह में अनेक वेराइटीज है, 84 लाख योनियां सब जगह है। जैसे इंद्र, इंद्र का जो सारथी या रथ क्या है, ऐरावत है, हाथी है, तो वह है देवलोक में। प्रायः देवताओं के जितने भी वाहन है वो सभी पशु है, प्रायः ये देखा गया है, किसी पशु को ही वो लोग ने वाहन बनाया, मतलब वो लोग है वहां पे, है ना, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं वो लोग है वहां पे। और शिला प्रभुपाद जी इसी के तात्पर्य में कहते हैं कि उर्वशी ने इस प्रकार आके यहाँ पे अपना विचार प्रकट किया पुरुरवा को, लेकिन साथ साथ में अनेक कंडीशन रखी, जैसे मैं केवल घी में, शुद्ध देसी घी में पकाया हुआ ही भोजन करूंगी, ये कंडीशन रखा उसने। क्यों ऐसा रखा? क्योंकि वहां की, प्रभुपाद जी कहते वहां की स्थिति अलग है, वो श्रापित होने की वजह से इधर आई है, यहां की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। तो स्थिति अलग होने के अनुसार ये नियम बदल जाते हैं, उनको, उर्वशी को वो नियम नहीं लगेगा। हाँ, उसका पुण्य खत्म हो रहा है वो अलग बात है, पुण्य खत्म होने के बाद उसे भी इधर ही आके कॉलीफ्लावर अपना मीरा रोड मार्केट में बेचना पड़ेगा। भले उर्वशी है तो क्या हुआ, उसको भी फिर वो सब नियम खत्म, पुण्य खत्म, बात खत्म हो जाएगी, नियम लग जाएगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर का नियम अलग है, जिस दिन इलेक्शन हार के प्राइम मिनिस्टर अगर सामान्य जन हो जाता है तो उसके भी नियम, उसी व्यक्ति के लिए इसी देश में, इसी स्थान में, इसी काल में नियम बदल जाएंगे। तो यहां पे दोनों के जो अलग अलग नियम होने की वजह से उर्वशी पुरुरवा को अप्रोच करती है। तो चाणक्य पंडित कहते कि जब धर्म के अनुसार अगर कोई स्त्री किसी अपने से श्रेष्ठ पुरुष को शादी ब्याह के लिए अप्रोच करें, तो धर्म के नियम के अनुसार उस व्यक्ति को संभव है तो इससे ब्याह करना चाहिए, स्त्री से। और शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई पुरुष अपने से नीचे गुण वाली स्त्री, अगर अपने से नीचे वर्ण वाली स्त्री लेकिन गुणवान है, अगर भक्त है, तो उसे वो अपनी पत्नी बना सकता है। ये वेदोक्त कार्य है, ये शास्त्रोक्त है, जो चाणक्य पंडित भी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी भी कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार पुरुरवा पति बने और उर्वशी स्त्री बने, ये बिल्कुल ही सही है, वेदोक्त है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरुरवा इस पृथ्वी के श्रेष्ठ राजा थे, उच्च वर्ण के थे, क्षत्रिय वर्ण के थे। वैसे तो सत्युग की बात है तो हंस वर्ण कहे जा सकते हैं। उर्वशी एक स्त्री है जो देवलोक से श्रापित होकर इधर आई है, तो पुरुरवा से इस स्थान पे वो निचले स्तर की हो गई, निचले वर्ण की हो गई, और वो अगर ब्याह के लिए अप्रोच करते हैं तो पुरुरवा इसे, इसीलिए देखो उर्वशी क्या कहती है, आपको मैं पति रूप में स्वीकार करूंगी, ऐसे कहा। हाँ, बॉयफ्रेंड रूप में ऐसे नहीं बोला, हाँ कि या लिविंग पार्टनर के रूप में ऐसे नहीं कहा, कहा कि आपको मैं पति रूप में स्वीकार करती हूं, न ये बॉयफ्रेंड है न लिविंग पार्टनर है, वेदोक्त रूप में आपको पति रूप में स्वीकार करके आपके साथ रहूंगी। तो परफेक्टली वेदोक्त है, इशारे को समझना चाहिए कि परफेक्टली वेद के अनुसार ये चल रहा है। ये एक अलग बात है, अलग वर्णन है कि पुरुरवा का लष्ट जो है वो इतना ज्यादा मात्रा में था कि वो आकर्षित इतने हो गए कि आसक्त हो गए उससे, लेकिन वेद तो यही कहता कि जिसे जिसे लष्ट सता रहा है, जिस व्यक्ति को, उसे कायदे से पत्नी ग्रहण करना चाहिए। वेद के नियमों के अनुसार गुरु के मार्गदर्शन में पत्नी ग्रहण कीजिए, पत्नी के साथ संग कीजिए, और जितने पुत्र चाहिए उतने प्राप्त कीजिए, देन इट इज परफेक्टली ऑल राइट। आप में समता होनी चाहिए। कई बार मुझे भक्तों ने यह प्रश्न भी किया है, मेरे इस्कॉन के इतिहास में मैंने देखा है कि क्या कोई दो विवाह या तीन विवाह करे तो चलेगा, और इस्कॉन में देखा गया है विशेष करके फॉरेनर्स दो विवाह, तीन विवाह, चार विवाह करते हैं भक्तगण। भारतीय भी कुछ है, यहां तक शिला प्रभुपाद जी के शिष्य भी हैं भारतीय है, जो दो या तीन या चार विवाह कर चुके हैं, करते हैं। अब उस व्यक्ति की क्या स्थिति है मैं नहीं जानता हूं, लष्ट है जरूर है, उसे संतुष्ट करने के लिए अगर वेद के नियमों के अनुसार अगर उसने दो विवाह किया है, तीन विवाह किया, चार विवाह किया, चार पत्नी से संग कर रहा है, पुत्र प्राप्ति कर रहा है, अगर वेद का नियम के अनुसार कर रहा है तो बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं है, वेद इसकी परमिशन देता है, यह समझ लेना। वेद परमिशन दे रहा है, लेकिन इस युग का, इस समय पृथ्वी पे समाज इसकी परमिशन नहीं देता है, कायदा इसे परमिशन नहीं देता, इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने कहा मत करो, डोंट डू इट। शिला प्रभुपाद जी को जब प्रश्न पूछा गया कि भाई ये व्यक्ति दूसरा विवाह करना चाहता है, आपके शिष्य है तो क्या करें, तो बोले वेद के अनुसार ठीक है, कर सकते हैं, अगर दोनों की इच्छा है और उसकी पालन करने की क्षमता है करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा, और समाज में हम एक उदाहरण स्थापित करके, प्रीचिंग मिशन हमारा है, तो हम समाज को जब प्रचार करने जा रहे हैं, हमारा इतना बड़ा संस्था है, तो जो बात समाज स्वीकार नहीं कर रही है, जिसका विरोध होने वाला है, तो हम ऐसे कार्य को न करें, इसीलिए इसको मना किया गया है। लेकिन उन दिनों का समाज क्षत्रिय राजा को या किसी को भी वो मना नहीं करता था। हाँ, दो विवाह, तीन विवाह, चार विवाह, दस विवाह, एक एक करोड़ विवाह भी लोगों ने किया है, भागवत में वर्णन है ना। हर्ष अशोक के पिता ने 1 करोड़ विवाह किया था। तो कर सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट वेदोक्त होना चाहिए। संग जो है स्त्री का, वो कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए। एक भक्त ने थोड़े दिन पहले प्रश्न पूछा था कि अगर स्त्री का, मान लो गर्भाशय ही निकाल दिया ऑपरेशन में, या मान लो पुत्र प्राप्त करने आया ही नहीं है, तो कुछ एबॉर्शन वगैरह कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे कुछ व्यवस्था करें, तो दैट इज ऑल्सो रिस्की। नॉट ओनली रिस्की, ये परफेक्ट पाप है, ये इलिजिट कैटेगरी में आएगा। चाहे जीव ने गर्भ में प्रवेश कर लिया है, बाद में उसको तुम धक्का मार के बाहर निकाल दो और मार डालो, भगा दो, या जीव को गर्भ में प्रवेश करने के लिए ही रोक दो, उसे धक्का मार के उधर पहले से ही भगा दो, दोनों एक ही कैटेगरी में आता है, इलिजिट इलिजिट। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने कहा, विवाहित संबंध के बाहर में अगर हमने संग किया है वो इलिजिट है, तो विवाहित संबंध के साथ में रह के पुत्र प्राप्ति न करने के लिए किया, वो भी इलिजिट ही है। इलिजिट इज इलिजिट। चोरी 1 रुपए की हो, चोरी 100 रुपए की हो, या करोड़ रुपए की हो, चोरी चोरी ही होती है, इलिजिट इलिजिट होता है। बहुत बड़ा कठोर प्रवचन है, मैं पता नहीं मुझे आगे जाना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, लेकिन इन शॉर्ट इन पर्टिकुलर अध्याय को, ऐसे अध्यायों को समझना बहुत कठिन होता है। प्रथम बात, इसको शास्त्र दृष्टि से, आचार्य दृष्टि से ही समझ जा सकता है। इन लोगों के कार्यकलापों को हम गलत नहीं कह सकते, ये लीला है, ये पावनकारी है, और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे महाजन ऐसी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। इन लोगों पे अपने नियमों और अपनी बुद्धि से हम आरोपित अपना मंतव्य नहीं करते उनके ऊपर, लेकिन वही कार्य हम लोग नहीं कर सकते। हमारी स्थिति बिल्कुल अलग है, हम शूद्र हैं, कलयुग में आए हैं, हमें इन चीजों से बचना है, जो कि इतना कठिन है। इस लीलाओं से यह समझ में आ रहा है, अगर चंद्र जैसा देवता नहीं बच पा रहा है, ब्रह्मा जैसे देवता नहीं बच पा रहे हैं, इंद्र नहीं बच पा रहा है, कोई नहीं बच पा रहे, तो हम एक छोटे मोटे मच्छर जो लस्ट के सागर में बिल्कुल डूबे हुए, हम लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? असंभव है। लेकिन नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर ने सरल करके दिखाया कि बिल्कुल ही सरल है। वो कहते हैं, हरिनाम का शरण लीजिए, एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वयं माया देवी भी आके कहेगी तो भी हम संग नहीं करेंगे उसका, हम उसे भी कहेंगे बैठो हरे कृष्णा जप करो, और दीक्षा नहीं हुई है तो दीक्षा भी लेके चले जाओ। हरिदास ठाकुर ने माया देवी को भी दीक्षा दे दी कि राम नाम छोड़ो, हरे कृष्ण महामंत्र का दीक्षा मुझसे लो, दीक्षा ले लो और जप करो। तो सोल्यूशन भी दिया है हमारे लिए शास्त्र ने, प्रॉब्लम भी बताया है, उनके कार्यों को बताया, उनके पश्चाताप को बताया है। हाँ, फिर उन्होंने यज्ञ करके वो भगवत धाम गए, वो सोल्यूशन बताया है। लेकिन हम ऐसे कार्य करके फिर यज्ञ करेंगे, ये हम नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारी स्थिति अलग है। तो हमारी स्थिति के लिए कलयुग में हरिदास ठाकुर जैसे महात्मा आके हमें बताते कि सीधा हरे कृष्णा जप करो, बाकी सब झंझट छोड़ो, या रामानंद राय जैसे लोग, ऐसे महान महान वैष्णव है जिनको ऐसा कोई विचार नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। और लास्ट फाइनल स्टेटमेंट जो जिंदगी भर मैंने हमेशा याद रखा है अपने दिलो दिमाग में, हाँ, मन में, बुद्धि में, वो हम सभी इस्कॉन वासियों को याद रखना चाहिए, जो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, वेदर लिसिट और इलिजिट, सेक्स इज ऑलवेज ट्रबलसम, मिजरेबल, ये आपको खत्म कर देगा, भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चन, कॉमेंट? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे। मैं किसी का पर्सनल क्वेश्चन आज नहीं लूंगा, फिर कभी अगर किसी को पूछना है तो बाद में पूछिएगा। हरि बोल।